प्यारे भाई और बहनों, आज सुसमाचार में प्रभु हमें स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। हम स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं इसके बारे में हमें समझाते हैं। हम जानते हैं कि स्वर्ग एक वास्तविकता है, स्वर्ग एक वास्तविकता है, और वहाँ हम कैसे पहुँच सकते हैं इसके बारे में प्रभु कहते हैं। इसके लिए हमें प्रभु का अनुसरण करना पड़ता है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए हमें प्रभु यीशु का अनुसरण करना पड़ता है, क्योंकि हम यीशु के साथ ही स्वर्ग जा सकते हैं। अगर हम स्वर्ग यीशु के साथ ही जा सकते हैं तो हमें उनका अनुसरण करना पड़ता है। हम जानते हैं संदियोहन के सुसमाचार के अध्याय 14 में प्रभु बहुत साफ बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए, और जगह तैयार करने के बाद तुम्हारे लिए निवास स्थान तैयार करने के बाद मैं वापस आऊँगा तुम लोगों को ले जाने के लिए। तो हमें से हर एक व्यक्ति को ले जाने के लिए प्रभु स्वयं आते हैं, प्रभु स्वयं आते हैं। इसलिए हमें प्रभु के साथ जाना पड़ता है। कौन प्रभु के साथ जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, इसके विषय में प्रभु बहुत अच्छी तरह हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं। प्रभु कहते हैं जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 24, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। दो चीजें हैं, आत्मत्याग करना और क्रूस उठाना, ये दोनों जरूरी है। हम जानते हैं इस दुनिया में रहते समय हम हमारी सुंदरता पर ध्यान देते हैं, हम अच्छे दिखना चाहिए, जहाँ पर हम रहते हैं वह भी सुंदर जगह होनी चाहिए। इस प्रकार हम सुंदरता पर ध्यान देते हैं, हम नाम पर ध्यान देते हैं, हमें अच्छा नाम कमाना है, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचे, हम नाम कमाना चाहते हैं। हम संपत्ति पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत संपत्ति हो, जमीन हो, गाड़ी हो, अन्य चीज़ें हो, कपड़े हो, सब कुछ हो, संपत्ति पर ध्यान देते हैं, और सुख लोलुपता पर ध्यान देते हैं, ऐश आराम पर ध्यान देते हैं। हम चाहते हैं हम सुखी रहें, बहुत अच्छे 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 खाना मिले और अच्छी तरह रह सकें, सब कुछ अच्छा रहे, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हो। इस प्रकार हम सुख लोलुपता पर भी ध्यान देते हैं, ऐश आराम पर। लेकिन प्रभु कहते हैं हमें आत्मत्याग करना चाहिए, इन चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए। वास्तव में जिन चीज़ों को पाकर हम सोचते हैं हमारा जीवन और अच्छा बनेगा, ये सब हमारे लिए एक बोझ बन जाता है, हमारे लिए एक बोझ बन जाता है, और हमें एक प्रकार से ये चीज़ें गुलाम बना देती हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों से छुटकारा पाना, यहाँ तक कि नाम कमाने की आशा से भी छुटकारा पाना हमारे लिए जरूरी है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम मिलते हैं एक धनी युवक से। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 16 से 22 तक, एक धनी युवक से हम मिलते हैं जो प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से कहते हैं, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन सा भला कार्य करूं। ईसा ने उत्तर दिया, इस विषय में तुम मुझसे क्यों पूछते हो, आज्ञाओं का पालन करो, पर इतना ही काफ़ी है। और फिर वो प्रश्न करने लगता है कौन सी आज्ञा है, तो प्रभु कहते हैं हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और उस युवक ने कहा मैं ये सब करता हूँ, इसका मतलब मुझे अनंत जीवन मिल जाएगा। प्रभु ने कहा यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो, और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। और पवित्र ग्रंथ कहता है सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था, वह बहुत धनी था। जब उनसे ये कहा गया कि तुम्हारी संपत्ति बेच डालो और गरीबों को दे दो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी, रखी रहेगी, तब वो उदास होकर चला जाता है, क्योंकि वो संपत्ति बेचना नहीं चाहता। संपत्ति बेचकर मुझे स्वर्ग राज्य नहीं चाहिए, अगर मेरी संपत्ति मुझसे बिछुड़ जाती है तो मुझे स्वर्ग राज्य नहीं चाहिए। हमारे पास भी कुछ ऐसी शिक्षा है, या शायद हमारी कुछ विचारधाराएं ऐसी है जिसके जरिए हम कुछ हमारे पास रखना चाहते, उसको छोड़ना नहीं चाहते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इस व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं ये संपत्ति है। व्यक्तिगत रूप से हम में से हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कौन सी ऐसी चीज़ है हमारे अंदर, मेरे अंदर, जिसके कारण मैं प्रभु के पास नहीं जा सकता, प्रभु के पास नहीं जा सकती। ये कौन सी चीज है, क्या है जो मुझसे, मुझे प्रभु से मिलने से रोक देता है? कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे प्रभु से मिलने से रोक देती है? इस पर मुझे विचार करना चाहिए। कभी हो सकता है मेरे अंदर के अहम भाव के कारण, मेरे अंदर इतना अहम भाव है, यानी अपने को इतना महत्व देता हूँ, और इसलिए मैं प्रभु के पास नहीं जा सकता। हो सकता है किसी के प्रति घृणा है मेरे अंदर, और इसलिए मैं प्रभु के पास नहीं जा सकता। मेरे अंदर ईर्ष्या की भावना है, इसलिए मैं प्रभु के पास नहीं जा सकता। अगर हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं है तो हमें प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? इस व्यक्ति ने पूछा था और प्रभु ने उसको बताया। लेकिन इतना काफी नहीं है कि हम प्रभु से पूछे, हम प्रभु की बात सुने, प्रभु जो बोलते हैं उससे सुने और उसके अनुसार हमारे जीवन को बदले। उस व्यक्ति ने भी ईमानदारी से शायद पूछा था मुझे क्या करना चाहिए, प्रभु उन्हें बताते हैं। और बाद में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो कहने लगता है मैं सब कुछ करता हूँ और क्या करना चाहिए, तो प्रभु और साफ उनको कहते हैं, तो फिर वो पीछे हटता है। इसी प्रकार हम में से कई लोग ऐसा पीछे हट जाते हैं। जब असलियत हमारे सामने आता है तो हम पीछे हटने लगते हैं, असलियत को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक प्रकार से यह पुल है, इस पुल को पार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इस पुल को पार नहीं करेंगे हम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु जो हमारे सामने दो बातें रखते हैं, आत्मत्याग और क्रूस, इन दोनों को सही ढंग से हमें समझना चाहिए। आत्मत्याग का मतलब हम जिस चीज पर ज़्यादा जोर देते हैं, ज़्यादा जिसको मैं पकड़ कर रखता हूँ, उसको छोड़ना, उसको छोड़ना। हो सकता है मेरा अहम भाव है, हो सकता है ये मेरे नाम कमाने की इच्छा है, हो सकता है मेरे संपत्ति के साथ मेरा जो लगाव है उसी को मुझे छोड़ना है, कुछ भी हो, या किसी व्यक्ति के साथ मेरे रिश्ता, कुछ भी हो। प्रभु हमसे कहेंगे तुझे एक बात की कमी है, एक बात की कमी है, वो कौन सी बात है? हम प्रभु से पूछेंगे तो प्रभु बताएंगे। लेकिन पूछना ही काफ़ी नहीं है, पूछने के बाद जब प्रभु जवाब देते हैं तो उस जवाब को सुनना, उसको स्वीकारना और उसके अनुसार हमारे जीवन को ढालना बहुत जरूरी है। ये रही आत्मत्याग की बात। दूसरी बात है क्रूस उठाना, क्रूस उठाना। आत्मत्याग करना काफी नहीं है, क्रूस भी उठाना पड़ता है। आत्मत्याग करने के साथ साथ क्रूस उठाना पड़ता है। इस दुनिया में हमें बहुत सारे दुख संकटों का सामना करना पड़ता है। क्यों ऐसा, इसका कारण क्या है? अच्छे कार्य करने के वाले के विरुद्ध दुनिया में कई लोग खड़े होते हैं, क्यों ऐसा? इसका कारण संत पौलुस हमें बताते हैं। कुरिंथियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 4:4 में इसका कारण संत पौलुस हमें समझाते हैं। अच्छाई फैलाने वाले के विरुद्ध लोग क्यों खड़े होते हैं, अच्छा करने वाले के विरुद्ध लोग क्यों खड़े होते हैं, इसका कारण संत पौलुस कुरिंथियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4:4 में बहुत सुंदर शब्दों से हमारे सामने रखते हैं। संत पौलुस कहते हैं, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। संत पौलुस कहते हैं, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। यानी इस संसार के देवता ने, शैतान ने अविश्वासियों को, जो भी प्रभु में विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों को अंधा बना दिया है। आगे इस अंधा बनाने से क्या होता है, वे प्रभु येसु की महिमामय सच्चाई को देख नहीं पाते। प्रभु येसु के प्रकाश, प्रभु येसु के सच्चाई, प्रभु येसु की ज्योति की सच्चाई को देख नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि वे अंधे हैं। और इसलिए वे एक प्रकार से अंधकारमय वातावरण में रहते हैं, अंधकारमय वातावरण में वे अंधकार में हैं। और इसके लिए संत पौलुस ये भी कहते हैं, जब हम अपने को अंधकार में पाते हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम ज्योति नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ की शुरुआत में, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय एक में ही प्रभु का वचन है। वहां पर कहा गया है, सब जगह अंधकार फैला हुआ था, लेकिन ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, तो प्रकाश हो गया। ईश्वर के वचन से प्रकाश आता है। जब हम चारों तरफ अंधकार देखते हैं या हमारे अंदर ही अंधकार देखते हैं, तो हमें उसी ईश्वर को पुकारना चाहिए, हे ईश्वर, तूने संसार की सृष्टि करते समय अंधकारमय संसार में तूने अपने वचन की शक्ति से प्रकाश लाया, तूने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए मैं तुझे पुकारता हूँ, हे प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे इस परिवार में आइए, और कहिए प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो जाएगा। यही संत पौलुस कहते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4:6 में कहते हैं, ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए, और उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वही महिमा जान जाएं जो मसीह के मुखमंडल पर चमकती है। तो इसी कारण, अंधकारमय वातावरण में रहने के कारण, या दुनिया के देवता ने उनको अंधा बना दिया, इसी कारण वे अंधे हैं, और वे ऐसे लोगों के विरुद्ध खड़े होते हैं जो ज्योति के विषय में बोलते हैं, जो प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं। इस प्रकार का वातावरण संत पौलुस के जीवन में था, और इसलिए इसके बारे में संत पौलुस कहते हैं अध्याय 4:7 से आगे, यह अमूल्य निधि हमें मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। और क्रूस के बारे में, जिस प्रकार के क्रूस का अनुभव संत पौलुस को होता है उसके विषय में संत पौलुस कहते हैं, हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते, हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते, हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते हैं, हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते, हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। तो क्रूस्ट होने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी कारीगर को बुलाकर लकड़ी का, सागुन का एक अच्छा क्रूस बनाएं। कई लोग करते हैं इस प्रकार का काम और क्रूस बनाने में बहुत ध्यान देते हैं, हमारा क्रूस इतना, हमारे चर्च का क्रूस इतना अच्छा बनना चाहिए करके हम अच्छे से अच्छे कारीगर को ढूंढते हैं, और हमारे घर में रखने के लिए भी हम जब क्रूस लाते हैं तो हम सुंदर से सुंदर क्रूस लेके आते हैं, अगर हो सके तो चांदी का या पीतल का, या अच्छे तरह अगर पैसे वाले हैं तो सोने का भी शायद क्रूस लाएंगे, अपने पसंद के क्रूस लेके आते हैं। लेकिन जब प्रभु क्रूस के बारे में कहते हैं, वो क्रूस है जो प्रभु हमें देते हैं, प्रभु हमें देते हैं, जिसको हम नहीं चुन पाते हैं, प्रभु जो क्रूस हमें देते हैं उसी को ग्रहण करना है, वो उसी को ग्रहण करना है। शायद वह उतना सुंदर नहीं दिखेगा, लेकिन उसी में हमारी मुक्ति है। हम अपने क्रूस को चुन नहीं सकते हैं, प्रभु क्रूस जो हमें देते हैं उसी को चुनना हमारा काम नहीं है, प्रभु हमें चुन के देते हैं। परिवारों में जब हम जाते हैं हमें मालूम है कि किस प्रकार का क्रूस है, अपने बच्चों के जीवन को लेकर कुछ लोग यातना सहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को लेकर चिंतित रहते हैं, उनके लिए वो क्रूस है। किसी किसी पति के लिए पत्नी का जीवन क्रूस है, ठीक से व्यवहार नहीं करती है, ठीक से बात नहीं करती है, बच्चों को नहीं संभालती है, ये उनके लिए क्रूस है। किसी पत्नी के लिए अपने पति की जीवन शैली, पति की जीवन शैली क्रूस बन जाता है, वो पियकड़ रहता है, पीने जाता है, शराबी है और गाली बकता रहता है और लोगों को, घर के लोगों को, पड़ोसियों को परेशान करता रहता है, वो उसके लिए क्रूस है। एक धर्म समुदाय में रहने वाले व्यक्ति के लिए दूसरों के साथ व्यवहार करना एक क्रूस है, दूसरों के साथ व्यवहार करना, प्रार्थनामय जीवन बिताना और ब्रह्मचर्य के व्रत को हृदय से ग्रहण करना और संपत्तियों को छोड़ना, ये सब क्रूस बन सकते हैं। हमारे लिए यीशु प्यार के साथ हमें अपना कर जो क्रूस हमारे कंधे पर रख देते हैं, वही हमारा मुक्ति का रास्ता है। आइए प्यारे भाई और बहनों, जो भी क्रूस प्रभु हमें देते हैं उसे हृदय से ग्रहण करें, क्योंकि उसी में हमारी मुक्ति है, उसी से ही हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। हमारा क्रूस हमारे लिए वो एक सीढ़ी है जो हमें स्वर्ग पहुंचाएगा, इस धरती और स्वर्ग के बीच में सीढ़ी। याकूब ने अपने सपने में देखा था एक सीढ़ी जिसका एक सिरा स्वर्ग पहुंचता है और स्वर्गदूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। मेरे जीवन का जो क्रूस है मेरे लिए स्वर्ग चढ़ने की सीढ़ी है। आइए हम हमारे अपने जीवन के क्रूस को हृदय से ग्रहण करें और प्रभु से शक्ति मांगे, हे प्रभु मुझे इस क्रूस को ढोने में मदद कीजिए, मेरा क्रूस भारी है, हे प्रभु मदद कीजिए कि मैं इस क्रूस को ठीक से ढो सकूं।